इसमें लोगों ने करना, एक बस ही हो गया ठीक। ओके अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलाम अला इबादिहि लजीन अस्तफा अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما تو سورة النمل کی تفسیر ہم اس کلاس میں پڑھتے ہیں معروف القرآن کی جلد نمبر 6 سے اور اس میں ہم ان آیات جو ابھی تلاوت کی گئیں ان سے لے کر کے 41 41 ہاں تو کیا ہے 38 سے 41 آیات ہیں تو ان کے ہم عارف مسائل پڑھ رہے تھے اور اس میں یہ بحث چل رہی تھی کہ معجزہ اور کرامت میں کیا فرق ہے کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے جو کہا تھا نا کہ بھئی کوئی ہے جو کہ ملکہ بلقیس کا تخت پہنچا دے ہمارے پاس اس سے پہلے کہ وہ یہاں پر حاضر ہو تو اس وہ جس نے بھی پہنچا دیا تھا یا تو سلیمان علیہ السلام نے خود ہی اس کو پہنچا لیا تھا اپنے پاس یا یہ کہ کسی درباری نے پہنچایا تھا تو یہ جو کام ہوا تھا یہ معجزہ تھا اگر سلیمان علیہ السلام نے کیا اور اگر سلیمان علیہ السلام کے کسی رفیق نے کسی صحابی نے کیا تو یہ کرامت کہلائے گا ٹھیک ہے تو یہ تو ہم نے پڑھ لیا تھا اور یہ بھی بات بڑی اہم پڑھی تھی کہ امت کے اولیاء اللہ کے ہاتھوں جتنی کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے یہ سب رسول کے معجزات میں شمار ہوتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ رسول ہی کی وجہ سے امتی کو جو ہے وہ ہدایت ملی ہوتی ہے اور شریعت کا اور ہر چیز کا علم ملا ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس کی جو نسبت ہے نا اوپر رسول کے سے ہی جا کر کے ملتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک بڑا اہم کانسیپٹ ہے ہمارے دین کے اندر کہ جس کے سبب سے جو ہدایت کے اوپر آتا ہے تو اس کے تمام اعمال کا جو ثواب ہے نا وہ سبب کو مل رہا ہوتا ہے تو نبی جو ہیں وہ امت کے ایک ایک فرد کے ایمان لانے کا سبب ہوتے ہیں تو امت کے ہر فرد کا ثواب جو ہے اوپر جا کر کے نبی کو مل رہا ہوتا ہے اور ایون بیچ میں بھی امتیوں میں بھی اگر کوئی امت ایسا ہے کہ جس نے دوسرے امتیوں کو بلایا ہو نبی کی طرف اور وہ آ کر کے ایمان لے آئے ہو نبی پر تو اس کو بھی جو ہے وہ ان تمام لوگوں کا ثواب مل رہا ہوتا ہے جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امت کا ثواب مل رہا ہے کیونکہ انہوں نے ہی پکڑ پکڑ سے تو محاورتن خالی کہہ رہے ہیں بلا بلا کر کے عشر مبشرہ کے میں سے اکثر صحابہ کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی لے کر کے آئے تھے تو جتنے اعمال کر رہے ہیں سب کا ثواب جو ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مل رہا ہے اور ان کا ثواب اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مل رہا ہے ہم تو تصور نہیں کر سکتے نا کہ اتنا ثواب لے کر کے پھر یہ جائیں گے کہاں ہے نا جنت میں جائیں گے تو جنت کتنی بڑی ہوگی ہے نا وہ تو ماشاء اللہ بچوں کو زیادہ اچھی سمجھ میں آتی ہے ہمارے جن کو ہم نے بڑے پریزنٹیشن بنا بنا کر کے سمجھایا تھا کہ جنت کتنی بڑی ہے ٹھیک ہے تو ہمارے تو تصور میں نہیں آ سکتی کہ جنت کی کیا کیا اس کی مطلب سائز ہوگا جنت کا جس کے اندر ان سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ ماشاء اللہ اتنے بڑے بڑے ثوابوں کا بدلہ دے کر کے وہاں پہ اکوموڈیٹ کریں گے اچھا اگلا جو ٹاپک ہے اس میں وہ ہے تخت بلقیس کا واقعہ کرامت تھی یا تصرف تھا کرامت کی تو تعریف ہم پڑھ چکے کہ خارق عادت جو عمل ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ کی عادت اس دنیا میں کیا ہے کہ اسباب کو استعمال کر کے کام کرتے ہیں ٹھیک ہے نا جو بھی کام دنیا میں اللہ تعالیٰ کرتے ہیں نا تو اسباب کے ذریعے سے کرتے ہیں جیسے بارش ہوتی ہے تو پہلے بادل بھیجتے ہیں پھر جو ہے وہ بادلوں سے پانی برساتے ہیں ہے نا دنیا میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے ماں باپ کو تیار کرتے ہیں اس کے لیے پھر اس کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے نا بغیر ماں باپ کے جو ہے وہ بچہ دنیا کے اندر نہیں بھیجتے انسان نہیں بھیجتے بادل کے بغیر جو ہے وہ پانی نہیں بھیجتے ہر چیز کے لیے تعالیٰ سبب استعمال کرتے ہیں تو اگر کبھی اللہ تعالیٰ سبب کے بغیر کوئی کام کر دیتے ہیں نا تو یہ ایک انہونی بات ہوتی ہے ठीक है ना, इसी को जो है वो मौजजा, करामत या इस्तिदराज कहते हैं, जिसके बारे में पिछली क्लास में बात हुई थी। अच्छा, तसर्रुफ क्या होता है? तसर्रुफ का जो लफ्ज है ना, ये अरबी जुबान के लफ्ज सराफा से निकला। सराफा, सर्फ कहते हैं ना चेंज को, ठीक है। जब आप मिडिल ईस्ट में अगर आप रहते हो तो किसी दुकान के ऊपर जाएं तो वो पेमेंट करने के ऊपर जो है ना वो क्या कहते हैं, आप उनको अगर आपने 20 रियाल का खर्चा हुआ है और आप उनको 100 रियाल का नोट पकड़ा दें, ठीक है ना, तो वो जो 80 रियाल आपको वापस करेंगे ना वो सर्फ कहलाता है, चेंज, ठीक है ना। अक्सर कैसा हो, क्या होता है कि आपके पास चेंज नहीं होता, छोटा छोटा आपके पास नोट नहीं होता, तो आप उनको 500 रियाल का नोट पकड़ाने की कोशिश करते हैं ना, तो वो क्या जवाब देते हैं, माफी सर्फ, है ना, मेरे पास चेंज नहीं है भाई, मुझे तो एग्जैक्ट पेमेंट करो या कोई छोटा नोट पकड़ाओ, तो छोटा चेंज होगा मेरे पास, 500 रियाल का चेंज नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो सर्फ जो है ना वो चेंज को कहते हैं। इसी के अंदर सर्रफा, सर्रफा जो है ना, ये इसकी एक एक यानी एक थोड़ा सा इसके अंदर मुबालगा आ जाता है कि तब्दीली, ठीक है, चेंज करना किसी चीज को, सर्रफा युसर्रिफु तसरीफन, ठीक है। तो उसी से जो है ना वो तसर्रफा भी इसी की एक वर्ब फॉर्म है, तसर्रफा या तसर्रफु तसर्रफन फहुवा मुतसर्रिफन, ठीक है। तसर्रफ का मतलब क्या होता है कि किसी के अंदर घुस करके उसके अंदर चेंज ले आना, ठीक है ना, किसी के अंदर घुस करके जो है ना उसको जो है वो मेजर किसी किस्म का कोई चेंज उसके अंदर ले आना, मामूली किस्म का चेंज नहीं, जाहिरी किस्म का चेंज नहीं, बल्कि बड़ा मेजर किस्म का चेंज, ठीक है। तो तसर्रुफ करने का लफ्ज जो है वो इसलिए इस्तेमाल होता है। तो इसकी तफसील हम पढ़ते हैं पहले कि शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि बहुत बड़े जो है वो शेख अकबर कहलाते हैं, तसव्वुफ के शेख, ठीक है, जैसे एक और भी बहुत बड़े शेख मशहूर हैं वो, और ये जो है ना तकरीबन बराबर बराबर लेवल के शेख कहलाते हैं। तो इन्होंने इसको आसिफ बिन बरखिया का तसर्रुफ करार दिया है, ठीक है, कि जो तख्त वहां से उठ करके इधर आ गया ना, ये एक बड़ा मेजर किस्म का एक तब्दीली थी फिजिकल वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, इतना बड़ा तख्त जो है वो उठा करके यहाँ पे लेकर के आ जाना, तो ये तसर्रुफ, ठीक है। तसर्रुफ इस्तिलाह में ख्याल व नजर की ताकत इस्तेमाल करके हैरत अंगेज काम सादर करने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसके लिए नबी या वली बल्कि मुसलमान होना भी शर्त नहीं है। वो मेस्मरिज्म जैसा एक अमल है, मेस्मरिज्म है नहीं एग्जैक्टली, लेकिन मेस्मरिज्म जैसा एक अमल है, मेस्मराइज कर देना, नजरबंदी जिसको उर्दू में कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले पर जो जादूगर थे, तो उन्होंने तसर्रुफ नहीं किया था, उन्होंने मेस्मरिज्म किया था, मेस्मराइज कर दिया था सारी की सारी ऑडियंस को, नजरबंदी कर दी थी, ठीक है। उन्होंने धोखा नहीं दिया था, मतलब वो नहीं किया था जो कि आजकल के छोटे मोटे जादूगर करते हैं ना, जो कि एक बच्चा भी कर सकता है कि स्टेज के ऊपर खड़े होकर के टोपी के अंदर से जो है वो खरगोश निकाल लिया या कबूतर निकाल ली, ये नजरबंदी नहीं होती, ये तो हाथ की सफाई कहलाती है, हाथ की सफाई, ठीक है ना। हाथ की सफाई में और नजरबंदी में बड़ा फर्क होता है, ठीक है। तो जादूगरों ने नजरबंदी करी थी मेस्मराइज करके, ठीक है। तो तसर्रुफ भी जो है ना वो मेस्मरिज्म ही के जैसा एक अमल है, ठीक है। सूफियाए कराम ने इस्लाह मुरीदीन के लिए कभी कभी इसको इस्तेमाल किया है, ठीक है। सूफियाए कराम जो इंसानों की इस्लाह का काम करते हैं, ठीक है, जिनको मशाइख का लफ्ज भी जिनके लिए उमूमी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये इंसानों की बातिनी इस्लाह का काम करते हैं, ठीक है, कि बदनीयती को नेक नीयती में कैसे तब्दील किया जाए, ये एक बहुत बड़ी मेहनत है, बल्कि असल मेहनत यही है, समझ लें, है ना। नेक नीयत इंसान बन जाए तो फिर तो बात ही उसकी बन गई, ठीक है, क्योंकि इन्नमल आमालु बिन्नियात। तो ये नीयत, ये दिल का फेल है, ये अंदर की चीज है ना, ये कोई बाहर से नजर नहीं आती नीयत। तो नीयत की इसलाह कैसे करनी है ये इंसानों को सिखाते हैं, अपनी रूहानी बीमारियों की इसलाह कैसे करनी है, भाई बहुत गुस्सा, गुस्से के मरीज हैं ये, है ना, जुबान पे काबू नहीं, हाथ पे काबू नहीं, कभी हाथ चल रहा है, कभी जुबान चल रही है, कभी जो है वो दिमाग चल रहा है, कभी कुछ हो रहा है, भाई इतना गुस्सा ये नॉर्मल नहीं है, ये हद से तजावुज किया हुआ गुस्सा है,
तो इस गुस्से को जो है वो शरीयत के दायरे में लेकर के आना, ये बातनी इस्लाह कहलाती है। उसी तरह तकब्बुर एक रूहानी मर्ज है, बिल्कुल एटमी रूहानी मर्ज, इसको कैसे शरीयत के दायरे के अंदर लेकर के आना है, तो ये बातनी इस्लाह का काम कहलाता है। ठीक है ना, ये अल्फाज पढ़ाने से नहीं हो जाता खाली, ठीक है, कि भाई अरबी जुबान पढ़ लें या जो है फिका के की जुजियात पढ़ लें या आप जो है वो तफसीर के जो है वो मालूमात हासिल कर लें, उसूल हदीस पढ़ लें, इनसे ये गुस्सा काबू में नहीं आता। ठीक है, गुस्सा काबू करना एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म का प्रोसेस है। तो सूफियाए कराम जो है ना वो इस्लाह मुरीदीन का काम करते हैं ना, कि भाई उनको एक तो सही गलत की तमीज बता रहे होते हैं, जाती मामलात के अंदर उनको गाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, उनको जो है वो जिक्र का मामूल बताते हैं कि भाई आप इस तरीके से जो है वो इस्तिगफार किया करें, दुरूद शरीफ किया करें, आप जो है वो अपने यानी फिक्र अपनी जो है वो गुनाहों से बचने की तरफ मायल करें, आप मुराकबे कर लिया करें, है ना, मुराकबे मौत कभी कर लिया करें, कभी आप किसी और किस्म का मुराकबा बता देते हैं। तो इसी तरीके से वो कभी कभी जो है वो तसर्रुफ का इस्तेमाल करते हैं, यानी बाकायदा अपनी तवज्जो को मुरीद के कल्ब के ऊपर या जो उसके रूह के मुख्तलिफ लताइफ होते हैं उनके ऊपर मरकूज करके जो है ना वो उसके उनके अंदर से इन रूहानी बीमारियों के जो ट्यूमर्स होते हैं उन ट्यूमर्स को जो है वो किल करने की कोशिश करते हैं, किल करने की। ठीक है, तो इसको हजरत ने इस जुमले में लिखा कि सूफियाए कराम ने इस्लाह मुरीदीन के लिए कभी कभी इसको इस्तेमाल किया है, ज्यादा नहीं इस्तेमाल करते है ना, और ज्यादा इस्तेमाल कर भी नहीं सकते, और इतना ही आसान होता भी नहीं है, और बहुत सारी इसके अंदर टेक्निकलिटीज हैं, तो इस वजह से कभी कभी इस्तेमाल किया है। इब्ने अरबी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि अम्बिया अलैहिस्सलाम चूंकि तसर्रुफ करने से परहेज करते हैं, इसलिए सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह काम आसिफ बिन बरखिया से लिया। ठीक है ना, ये इब्ने अरबी रहमतुल्लाह का कौल है, जिससे कि दूसरे उलमा और मशायख को इख्तलाफ भी हो सकता है। ठीक है ना, कि भाई उन्होंने लिखा कि अम्बिया अलैहिस्सलाम तसर्रुफ से परहेज करते हैं, इस वजह से उन्होंने जो है वो आसिम बिन बरखिया से ये वाला काम लिया जो कि उनके दरबारियों में से एक थे। ठीक है, कुछ और मशायख कहते हैं कि नहीं, अम्बिया अलैहिस्सलाम ने भी तसर्रुफ से काम लिया है, कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी, मगर कुरान करीम ने इस तसर्रुफ को इल्मुम मिनल किताब का नतीजा बताया है ना, कि भाई जिसके पास किताब का इल्म था तो उसने ये काम किया। ठीक है, तो जिसके पास था उसने किया, जिसके पास नहीं था वो नहीं कर सका। इफरीतुम मिनल जिन के पास ये इल्म मिनल किताब नहीं था वो नहीं कर सका ये वाला काम। ठीक है, तो फरमाए कि ये जो अमल हुआ ना, अब यहाँ पे हजरत ने तसर्रुफ का जो लफ्ज इस्तेमाल किया, ऐसे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि भाई तसर्रुफ है तो फिर तसर्रुफ का लफ्ज क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा यानी समझने में किसी को मुश्किल हो सकती है, लेकिन बेसिकली ये जो अमल हुआ ना उस तख्त को वहां से उठा करके यहाँ पे लाने का, इसको कुरान मजीद ने इल्म मिनल किताब का नतीजा बतलाया है। इससे तरजीह इसी यानी इसी ओपिनियन को इससे तरजीह होती है कि ये किसी दुआ या इसमें आजम का असर था जिसका तसर्रुफ से कोई वास्ता नहीं। ठीक है, तसरुफ से इसका कोई वास्ता नहीं था, वो करामत ही के मफहूम में दाखिल है। ठीक है, यानी आसिफ बिन बरखिया ने यह काम किया था तो वो करामत था, वो तसरुफ नहीं था, वो करामत था। ठीक है, और यानी क्या मतलब, तसरुफ करामत नहीं होता। ठीक है ना, करामत अगर होती है ना तसरुफ, तो कोई काफिर नहीं कर सकता था, जैसे कि ऊपर लिखा है ना कि तसरुफ के लिए नबी या वली बल्कि मुसलमान होना भी शर्त नहीं है, है ना, कोई हिंदू साधु भी तसर्रुफ कर सकता है। ठीक है, तो हिंदू साधु भी तसर्रुफ कर सकता है, तो फिर हिंदू साधु जो है वो इसमें आजम को तो नहीं इस्तेमाल कर सकता, दुआ तो उसकी कबूल ही नहीं होती, अल्लाह ताला काफिर की दुआ को थोड़ी कबूल करते हैं, दूसरे कामों के, हाँ हिदायत के लिए दुआ करें काफिर तो अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल कर लेते हैं, हिदायत के लिए अगर दुआ करें, लेकिन और कोई थोड़ी कि अल्लाह मेरा ये वाला काम करते हो, मेरा ये वाला काम करते हो, और इस तरह से वो यानी दुआएं पढ़ पढ़ करके काम करवाता रहे, ऐसा नहीं। तो ये जो है ना वो करामत ही के मफहूम में दाखिल है। रहा ये शुबो, अच्छा एक मिनट, आपने क्या लिखा है, वो सहाबी जिन्होंने जिना की इजाजत मांगी थी उसके जवाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सीने पर हाथ रखा था, क्या ये भी तसर्रुफ था। यहाँ इसी वाकये को ही जहन में रखते हुए साहब ने कहा था कि दूसरे मशाइख जो हैं वो इस बात से एग्री नहीं करते कि अंबिया तसर्रुफ से इज्तनाब करते हैं। کیونکہ نبی علیہ وہ مشائخ سے کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نوجوان صحابی کے سینے کے اوپر جو ہاتھ رکھا تھا نا, تو یہ تصرف تھا. ٹھیک ہے, تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تصرف سے کبھی کبھی, جیسے کہ کبھی کبھی کے لفظ یہاں پر وہ کام لیا تھا. ٹھیک ہے, حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصی مدارس کے اندر لکھا ہوا ہے, ایک دفعہ ان کے پاس ایک بہت قریبی جو ہے نا وہ یعنی دوست کے درجے کے صاحب آئے اور بس پیچھے ہی پڑ گئے نا ان کے, کہ مجھے جو ہے وہ اللہ کی محبت, بس کسی طریقے سے مجھے اللہ کی محبت مل جائے, اور یہ مطلب بہت زیادہ نا کہ بس یعنی لٹک ہی گئے نا حضرت کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو بہت حضرت نے نا یعنی یہ بھائی یہ تو لمبا پروسیس ہے, اس میں تم آپ آنا جانا شروع کریں, یہ کریں وہ کریں, پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کو ملے گی. ٹھیک ہے نا, لیکن کچھ ایسا ان کے ساتھ تعلق تھا کہ یہ جو لٹک گئے اور حضرت جو ہے نا وہ بالآخر ان سے انکار نہیں کر سکے, تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جو ہے نا وہ سینے سے لگایا. ٹھیک ہے, اور بھیجا اور کافی دیر تک ان کو جو ہے وہ سینے سے لگائے رکھا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا ان کی حالت میں ایسی تبدیلی آئی, تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اشارہ کسی طریقے سے ہوا اور انہوں نے اس طرح سے کیا. لیکن یہ کوئی نارمل بات نہیں ہے کہ جی ایسی جو آئے اس کو جو ہے وہ آپ نے یہ کیا اور اس کے بعد اس کے کیفیات بدل گئیں, ایسا نہیں ہوتا. اچھا, یہ رہا یہ شبہ کہ ان کا یہ کہنا کہ انا آتی کبھی ہی قبل ان یرتد الیک طرفک, یعنی میں یہ تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے دا دوں گا, یہ علامت اس کی ہے کہ یہ کام ان کے قصد و اختیار سے ہوا. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ کہ کیا کہہ رہے ہیں, انا آتی کبھی ہی, میں لے کر کے آؤں گا اس کو اس سے پہلے کہ آنکھ جھپکتی ہو. تو یہ تو اپنے اختیار سے کہہ رہے ہیں نا کہ میں لے کر کے آؤں گا, آئی ول ڈو اٹ. ٹھیک ہے, تو یہ علامت جو ہے نا وہ تصرف کی ہے, کیونکہ کرامت ولی کے اختیار میں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, یہ اس جملے سے فرمانا ہے کہ بھئی یہ تصور اس جملے سے لگتا ہے, یعنی اس آیت کے الفاظ سے لگتا ہے کہ یہ ان کا تصرف تھا. ٹھیک ہے, اور اوپر علم من الکتاب والے الفاظ سے لگتا ہے کہ نہیں, یہ تصرف نہیں تھا بلکہ یہ ولی کی کرامت تھی. ٹھیک ہے, تو اب نہ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اس کا یہ جواب ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اطلاع کر دی ہو کہ تم ارادہ کرو گے تو ہم یہ کام اتنی جلدی کر دیں گے. ٹھیک ہے, یہ تقریر حضرت سیدی حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہو کی ہے, جو احکام القرآن میں سورہ نمل کی تفسیر لکھنے کے وقت حضرت نے ارشاد فرمائی تھی. ٹھیک ہے نا, یعنی حضرت کی یہ باقاعدہ یعنی الفاظ ہیں جو کہ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے سنے, تو انہوں نے پھر یہاں پر اپنے معارف و مسائل کے اندر ان کو نقل کر دیا کہ یہ ایسا ہے کہ ممکن ہے کہ ایسا ہوا. ٹھیک ہے, کہ یہ بیسیکلی یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں, پروف یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کرامت ہی تھی. ٹھیک ہے, اور اس طرح کے الفاظ انہوں نے کیوں کہہ دیے کہ انا آتی کبھی ہی, کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وقت یہ الہام فرما دیا کہ بھئی آپ جب یہ کریں گے نا تو فوراً سے ہم یہ کام کر دیں گے, تو اس وجہ سے یہ کرامت ہی رہے گی, یہ تصرف نہیں رہے گا. ٹھیک ہے, تو احکام القرآن میں سورہ نمل کی طرح, اچھا, اور تصرف کی حقیقت اور اس کے احکام پر مشتمل حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مستقل رسالہ بنام التصرف عربی زبان میں تھا, جس کو اردو ترجمہ احقر نے لکھا تھا, وہ جدا گانا شائع ہو چکا ہے. حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے تصرف, اردو زبان میں بھی ترجمہ شائع ہو چکا ہے, آج اس کے نظر سے یہ نہیں گزرا ہے. بہرحال یہ پوری ڈسکشن جو ہے وہ اس آیت کے اوپر ہو گئی, اب آگے کی آیت پڑھتے ہیں. اس سے پہلے آپ نے کیا لکھا ہے کہ آئی ریمبر ہیئرنگ ان اے ڈسکشن دیٹ تصرف فرام مشائخ از ناٹ پرمننٹ اینڈ دا پرسن سٹل ہیز ٹو ورک آن ہمسیلف ٹو کیپ دا فیلنگز انٹیکٹ. تصرف جو ہے وہ پرمننٹ نہیں رہتا, یہ آپ نے سنا ہے, تو اگر آپ نے سنا ہے تو ایسا ہی ہوگا, یقیناً آپ نے مشاعر سے ہی سنا ہوگا, لیکن اب اس میں تھوڑی سی اور ڈیٹیل بھی ہو سکتی ہے, ڈپینڈز آن یو نو واٹ کائنڈ آف تصور, کتنا زیادہ وہ انٹینس تصرف تھا. ٹھیک ہے, تصرف کتنا یعنی ڈیپ تھا, کتنا جو ہے وہ اسٹرانگ تھا وغیرہ وغیرہ, اس طرح اور بھی کچھ ہو سکتی ہے. بہرحال چلیں,
बहरहाल ये लेकिन इसको उस तरह से भी समझा जा सकता है, जो कि एक्चुअली ज्यादा ज्यादा ऑथेंटिक बात है। वो ये कि वो जो हमारे हजरात, खुसूसन हमारे हजरत जी भी ये फरमाते हैं, और उनके हजरत भी उनको ये फरमाया करते थे, और है ना कि अपनी चक्की तो हर एक को पीसनी पड़ती है, ठीक है, ये ना स्टिल द पर्सन स्टिल हैज टू वर्क ऑन हिमसेल्फ। तो इसको हमारे मशायख इससे तमसील दिया करते थे, अपनी चक्की पीसना, ये तो हर बंदे को पीसनी पड़ती है, ऐसा किसी के साथ नहीं होने वाला है कि बैठे बिठाए का जो है ना वो उसको विलायत मिल जाए, ठीक है ना, ये नहीं होने वाला है, इस मखमसे में ना रहना, ठीक है ना, कि बगैर चक्की पीसे हुए जो है ना, बगैर कुछ कुर्बानी दिए हुए, बगैर जो है वो यानी अल्लाह से मांगे हुए, रो रोए हुए, गड़गड़ाए हुए और मेहनत किए हुए, ऐसे ही सब कुछ हो जाएगा, शेख साहब आएंगे उंगली रखेंगे और जो है ना वो सब सेट हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। ये बस वही कि आप ही कुछ तवज्जो कर दें, मुझे तो जल्दी घर जाना है ना, हजरत का बयान है ना, आते हैं और आकर के जो है वो कहते हैं कि आप ही कुछ कर दें, मुझे तो जल्दी घर जाना है, ठीक है। तो ऐसे तो भाई अल्लाह की विलायत नहीं मिलती ना, तो यही बात है। तो परमानेंट हो या टेम्पररी हो, लेकिन हर सूरत में चक्की तो पीसनी पड़ेगी, यानी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अच्छा, आगे अगली आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अगले मिशन कौन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फलम्मा जाअत कीला अहाकदा अर्शुक कालत कअन्नहु हुव वउतीनल इल्मा मिन कबलिहा व कुन्ना मुस्लिमीन, ठीक है, कि तर्जुमा साथ साथ करते रहते हैं ताकि आगे फिर अगली क्लास में गालबन खुला से तफसीर कर सकेंगे। तो जब वो आ पहुंची है ना, जात वो आ गई, कीला इट वॉज सेड टू हर, उनसे उससे कहा गया, अहा कदा अर्शुक, क्या आपका अर्श ऐसा ही है, अर्शुकी, ठीक है, क्योंकि औरत थी, उनसे मुखातिब कर रहे हैं, खिताब कर रहे हैं, तो आपका अर्श जो है वो यानी आपका तख्त ऐसा ही है। औरत उसने कहा, कन्ना हो, हाँ गोया के ऐसा ही है, राइट, ऐसे ही लगता है मेरा अर्श तो है। वह ऊती इल्म मिन कबलिहा, और हमको मालूम हो चुका पहले से, वह कुन्ना मुस्लिमीन, और हम जो है ना वो हुक्म बरदार हो चुके हैं, यानी हम सबमिट होने की, हम सबमिट करने की नीयत से ही आए हैं आपके पास, ठीक है, हम आपसे कोई लड़ने वड़ने की, आपसे कोई बहस मुबहसा करने की नीयत से नहीं आए हैं। अल्लाह ताला उसकी तरफ से फरमा रहे हैं कि उसने जो है ना इस बात का इकरार कर लिया कि भाई इतना आपको तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी, हम तो पहले ही मानने की नीयत से आए हुए थे आपके पास, ठीक है ना, अगरचे के कलमा वलमा भी नहीं पढ़ा था, लेकिन नीयत हमारी थी कि आकर के आपके पास कलमा पढ़ देंगे। वसद्दहा, और रोक दिया उसको, अब उसके बारे में फरमा रहे हैं, सद्दा या सुद्दू, ठीक है, कि रोक दिया उसको, मा कानत तअबुदु मिन दूनिल्लाही, जिस चीज की वो, जिन चीजों की वो इबादत किया करती थी अल्लाह ताला को छोड़ करके, ठीक है ना, यानी जो पत्थर के बुत और वो लोग सूरज की इबादत किया करते थे, तो गैरुल्लाह की जो इबादत थी ना उसने उसको असल में रोका हुआ था, ठीक है ना, पहले सबमिट करने से इसको रोका हुआ था। सद्दे बाब कहते हैं ना, दरवाजा बंद करना, तो वो यही वाला सद है उर्दू जुबान में जो इस्तेमाल होता है। एक्चुअली नहीं, ये आजिज अपना जुमला वापस लेता है इस बारे में, कि ये वो वाला सद है कि वो सीन वाला सद होता है। खैर, इन्नहा कानत मिन कौमिन काफिरीन, अलबत्ता वो थी काफिर, काफिरों की कौम में से, यानी पहले जो है वो मुनकर कौम में से थी, ऐसा नहीं था कि वो कोई क्या कहते हैं यानी वरका बिन नौफिल और जैद ऐसे लोग थे ना, जो कि अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह, जो कि दीन इब्राहिमी के ऊपर थे, नबी अलैहिस्सलाम की बिरासत से पहले भी वो बुतों की परस्तिश नहीं करते थे, हालांकि उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम ने लोगों को शिर्क से रोकना शुरू नहीं किया था, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो पहले ही तौहीद के ऊपर थे, और जैसे ही नबी अलैहिस्सलाम उनके सामने आए तो उन्होंने फौरन इकरार कर लिया, ठीक है, या आई भी नहीं तो वो चूंकि शिर्क नहीं करते तो अल्लाह ताला ने उनको जन्नत वालों में ही शामिल कर लिया। तो ये ऐसी नहीं थी, बल्कि ये जो है ना पहले काफिरीन में ही शामिल थी, कुफर करने वालों में शामिल थी। कीला, उससे कहा गया, लहा यानी कीला लहा उदखुल सरह, के आप दाखिल हो जाएं महल के अंदर, असरह जो है वो महल को,
फलम्मा रअतहु, बस जब उसने उसको देखा यानी महल को देखा या महल के अंदर की चीजों को देखा, हसबतहु लुज्जतन, तो उसने गुमान किया, हसबा या हसबु गुमान किया, लुज्जतन यानी कि वो जो है वो गहरा पानी है, ठीक है ना। वकशफत अन साकिहा, और फिर उसने ना क्योंकि पानी गुमान किया, अब आगे हम पढ़ेंगे उसकी तफसील, तो उसने क्या किया पानी से बचने के लिए, अपने कपड़ों को बचाने के लिए उसने अपनी साख यानी अपनी पिंडली के ऊपर जो है ना वो कपड़े को हटा दिया, खोल दिया अपनी पिंडली, ठीक है। कशफा यकशफू मतलब खोलना, खोल दी उन्होंने अपनी पिंडली। काला, तो इसने कहा यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गालिबन ही कहा, इन्नहु सरहुन, ये तो महल है, मुमर्रदुन मिन कवारीर, इसमें तो कवारीर जो है ना वो जुड़े हुए हैं, ठीक है। कवारीर यानी बहुत ही डेलिकेट किस्म के जो है ना वो शीशा, इसके अंदर जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। कालत, तो उसने कहा, रब इन्नी जलम तो नफसी, ए मेरे रब, मैंने बेशक अपनी जान के ऊपर जुर्म किया था, वह असलम तो मा सुलेमाना, और अब जो है ना मैं तस्लीम करती हूँ अपने आप को, अपने आप को सुपुर्द करती हूँ सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ, यानी जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने आप को आपके सामने सुपुर्द किए हुए हैं, मैं भी अपने आप को सुपुर्द करती हूँ, लिल्लाह रब्बिल आलमीन, उस अल्लाह के सामने जो के तमाम आलमीन का रब है, ठीक है। तो यहां पर आकर के फिर उन्होंने कलमा भी पढ़ लिया मलका बिल्किस ने। खुलासे तफसीर शुरू कर लेते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये सब सामान कर रखा था, फिर बिल्किस पहुंची, यानी ये सारा इंतजाम इंतजाम करके रखा होता कि जी तख्त भी बुलवा लिया था और महल शहल भी बना के रखा हुआ था और उनके पूरा का पूरा ना उनके लिए यानी रेड कारपेट वेलकम वगैरह का इंतजाम किया हुआ था। तो बिल्किस पहुंच गई, सो जब बिल्किस आई तो उसने तख्त दिखाकर कहा, उससे तख्त दिखाकर कहा गया, कौ सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खुद कहा हो या किसी से कहलवाया हो, चूंकि कीला का लफ्ज इस्तेमाल है जिसका के फाइल नहीं पता किसने ये बात कही, कि क्या तुम्हारा तख्त ऐसे ही है, हा कदा अर्शु की, वो कहने लगी कि हाँ है तो वैसे ही। बिल्किस से इस तौर पर इसलिए सवाल किया कि हैयत तो बदली गई थी, अपनी असल के एतबार से तो वही तख्त था, ठीक है ना, यानी बस ऊपर से थोड़ी बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस वगैरह उसके अंदर कर दी गई थी, लेकिन बाकी सब असल तो वही था सब कुछ ना, तो सूरत वो ना थी, सूरतन चेंज की गई थी और जो है ना वो तबान जो है वो चीज चेंज नहीं की गई थी, इसलिए यूं नहीं कहा कि क्या यही तुम्हारा तख्त है, क्योंकि इम्तिहान लेना मकसूद था ना, तो अगर यही तुम्हारा तख्त है तो फिर उससे उसको जो है वो शक हो सकता था कि अच्छा ये क्यों बोल रहे हैं इस तरीके से, बल्कि ये कहा कि ऐसा ही तुम्हारा तख्त है, ठीक है। और बिल्किस उसको पहचान गई, ठीक है, यानी एहतमाल ये रखा कि वो ये सोचे कि शायद मेरे तख्त जैसा एक तख्त जो है ना वो यहां पे बना करके उन्होंने रखा हुआ है, ठीक है, तो उसकी जहानत का इम्तिहान लेना मकसूद था, ठीक है, कि वो इस जुमले से जो है ना वो कहते हैं ना वो थ्रो ऑफ हो जाती है, या वो जो है ना वो और से देखती है और अपने तवज्जो को मरकूज करके जो है ना वो हकीकत तक पहुंच जाती है, सिर्फ एक जुमला सुन करके जो है ना वो बेतवज्जुही का शिकार नहीं हो जाती और जुमले की बुनियाद पर फैसला नहीं कर लेती कि भाई हाँ ये जो ये कहने वाले ऐसे क्यों कहते, अगर जो है ये मेरा तख्त होता तो वो ऐसा सवाल क्यों करते, ठीक है ना। तो वो ऐसी थी, ऐसी उसकी अकल थी कि वो जाहिर से पीछे देखने वाली थी, ठीक है ना, जाहिर से पीछे देखने वाली थी, मादे के पार तो खैर इतना तो नहीं कह सकते, ठीक है, सिर्फ जो है ना वो अल्फाज पे फैसले करने वाली नहीं थी, ठीक है, बल्कि अपनी 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 निगाहों को इस्तेमाल करने वाली थी, अपनी तवज्जो को मरकूज करने वाली थी, ठीक है। तो क्या हुआ कि बिल्किस उसको पहचान गई और उसके बदल देने को भी समझ गई कि भाई ये तब्दीलियां उसके अंदर की गई हैं, वरना जो है ना वो मेरा ही तख्त है, इसलिए जवाब भी मुताबिक सवाल के दिया, ठीक है, और ये भी कहा कि अच्छा यानी मुताबिक सवाल क्या जवाब दिया कि कअन्नहू, ठीक है, कि गोया कि यही है, ठीक है, तो यानी पहचान तो हो गई थी लेकिन जवाब जो है ना उसने बड़ा यानी कहते हैं नपातोला किस्म का जवाब दिया, नपातोला किस्म का बड़ा सोफिस्टिकेटेड अंदाज में उसने जवाब दिया, कअन्नहू हुआ है ना कि गोया कि यही है, ठीक है।
अच्छा
और साथ साथ उसने फिर बात तो वो समझ गई थी, पक्की बात हो चुकी थी, तो उसने फिर ये भी कहा कि हम लोगों को तो इस वाकये से पहले ही आपकी नबुवत की तहकीक हो चुकी है और हम उसी वक्त से दिल से मुती हो चुके हैं, है ना, तस्दीकुम बिल कल्ब हो चुका है, इकरारुम बिल लिसान अभी तक नहीं किया था। ईमान तो दोनों के साथ मुकम्मल होता है ना, तो इकरारुम बिल लिसान को इन्होंने जो है ना वो पेंडिंग में रखा हुआ था। अगर कोई शख्स जो है वो इकरारुम बिल लिसान को इंटेंशनली पेंडिंग में ना रखे, दिल से तस्दीक कर ले, किसी खास वजह से जुबान बंद करके रखा हुआ है, वो तो मोमिन हो जाएगा, है ना, कि भी किसी मजबूरी की वजह से, जान का खौफ है, किसी और वजह से उसने अपनी जुबान को बंद रखा हुआ है, दिल से वो तस्दीक कर चुका है, ऐसा बंदा तो मोमिन है, ठीक है ना। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया था, बल्कि इन्होंने जो है ना वो समझ लें इंटेलेक्चुअली कन्विंस हो चुकी थी, ठीक है, लेकिन अभी पेंडिंग में रखा हुआ था, अभी अभी पूरा का पूरा जो है ना वो यानी एंटर नहीं हुई थी अभी तक इसके अंदर, ठीक है, एंटर जो है फिर इकरारुम बिल लिसान के साथ हो गई बाद में, जैसे कि अगली आखिरी आयत के अंदर है। तो फरमाने लगी कि हम तो उसी वक्त से दिल से मुती हो चुके हैं मुस्लिमीन, ठीक है, जब कासिद से आपके कमालात मालूम हुए थे, इस मौजजे की चंदा हाजत ना थी, है ना, मतलब चंदा हाजत के मतलब को क्या, खाम खे आपने इतनी तकलीफ करी, इतना तकल्लुफ किया, कहते हैं ना भाई, तो और चूंकि इस मौजजे से कबल तस्दीक व एतिकाद कर लेना कमाल अकल की दलील है, इसलिए अल्लाह ताला उसके आकिल होने की तकरीर फरमाते हैं, ठीक है ना, दिल से तो कर चुकी थी ना, तो अल्लाह ताला फिर उसकी अकल की, कमाल अकल की यानी आकिल होने की तकरीर फरमाते हैं, ठीक है। वसद्दहा मा कानत ताबुदु मिन दूनिल्लाहि इन्नहा कानत मिन कौमि काफिरीन, के बस उसको जो है ना वो यानी उसके झूठे माबूदों ने जो है ना वो रोका हुआ था, क्योंकि इबादत करती थी ना वो झूठे माबूदों की, और इबादत जो है ना एक ऐसा फेल है कि जिसके अंदर मोहब्बत शामिल होती है, ठीक है ना, क्योंकि इबादत मोहब्बत की एक्सट्रीम फॉर्म को कहते हैं, ठीक है, तो अब जब झूठे माबूदों से मोहब्बत हो जाए, वो भी ऐसी शदीद वाली मोहब्बत, तो फिर वो मोहब्बत तो अंधा कर देती है ना इंसान को, तो वो फिर यानी सोचता नहीं है कि वो क्या कर रहा है, अनलेस के उसके सामने जो है वो कोई ऐसी चीज आ जाए कि जिससे वो फिर अकली तौर पर जो है ना वो सोचने पर मजबूर हो जाए कि यार मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये उसके सामने जैसी आई, ऐसी दलील आई, तो उस वक्त उसने अपनी इबादत से जो है वो तौबा कर ली, ठीक है, तो अल्लाह ताला जो है ना वो उसके आकिल होने की तकरीर फरमाते हैं कि फिल वाकई वो थी समझदार, मगर चंद रोज तक जो ईमान ना लाई ना, तो वजह इसकी यह है कि उसको ईमान लाने से गैर अल्लाह की इबादत ने, जिसकी उसको आदत थी, रोक रखा था, ठीक है, और वो आदत इसलिए पड़ गई थी कि देखिए थानवी रहमतुल्लाह क्या जबरदस्त तफसीर फरमा रहे हैं ना, अल्फाज के दरमियान ब्रैकेट्स के अंदर क्या आप जबरदस्त जोड़ रहे हैं अल्लाह ताला के अल्फाज को अपनी तफसीर के साथ, ठीक है, कि ये जो अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि कानत मिन कौमिन काफिरीन, तो ये क्यों फरमाया कानत मिन कौमिन काफिरीन, वजह ये थी कि पीछे जो फरमाया कि गैरुल्लाह की इबादत ने उसको जो रोक रखा था, तो अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि उसको इस गैरुल्लाह की इबादत की आदत क्यों पड़ गई थी, क्योंकि वो काफिर कौम में से थी, यानी उन्हीं की सोहबत में ही रहती थी, उन्हीं के साथ उठना बैठना इसका था, बस जो सबको देखा वही आप करने लगी, है ना, डू व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू, है ना, जब रोम में रहते हो तो फिर रोमन जैसा काम करना वैसे ही करना शुरू कर दो, ठीक है ना, अपने आप को जुदा करने की क्या जरूरत है ना, गो विद द फ्लो, राइट, सारे जैसे जा रहे हैं जिस तरफ जो भीड़ चलनी शुरू हो जाए तो भीड़ के साथ जो है वो चलना शुरू हो जाओ, अपना अकल इस्तेमाल, अपनी अकल इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है भाई, ठीक है, तो ये भीड़ को फॉलो करना कोई अच्छी बात नहीं होती, अपनी अकल अल्लाह ताला ने दी है तो अकल इस्तेमाल करना, फिर अगर भीड़ जो है वो खैर की तरफ जा रही है तो भीड़ ही के साथ जाओ, ये नहीं कि अकल इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि लोग खैर की तरफ भी अगर जा रहे थे ना, नहीं, मैं तो अपना अलग रास्ता अपनाऊंगा, है ना, मैं क्यों लोगों के साथ जाऊं, मैं तो फिर कोई अपना अलग ही रास्ता अपनाऊंगा क्योंकि मैंने अकल इस्तेमाल करी थी, नहीं भाई, अगर खैर की तरफ भीड़ जा रही है तो आप भीड़ के साथ जाएं, और अगर खैर की तरफ जो है वो एक बंदा जा रहा है तो आप उस एक बंदे के साथ जाएं, ठीक है। अकल को इस्तेमाल करने का ये मकसद है, ये नहीं कि जी बस अपना एक जुदा रास्ता बनाना, देवण ईंट की जुदी मस्जिद बनाना, ये मकसद नहीं है इसका, ठीक है। तो जब आप जो है ऐसा नहीं कर रहे होते हैं, अल्लाह की दी हुई अकल को इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं, तो फिर आपकी अच्छी खासी जहानत भी जो है ना वो आपको फायदा नहीं दे रही होती है। सिर्फ मलका का तख्त आया था पलक झपकने से पहले, और वो खुद अलग से आई थी। जी ऐसे ही था, ठीक है। चले, आप डांट से बच गए हैं वैसे, लेकिन बस मूड इस वक्त नहीं था वरना। चले आज जी, वो बाद में पहुंची थी ना, तख्त तो पहले से आकर रखा हुआ था ना, ठीक है, वो तो बाद में पहुंची। अगरचे कि उसके पहुंचने की भीड़ भीड़ तो वो क्या कहते हैं धूल वूल उड़नी तो शुरू हो चुकी थी, इतना बड़ा लश्कर लेकर के आ रही थी, तो धूल उड़ती देखी थी ना, जब भी तो पीछे लिखा हुआ है, तब जो है इन्होंने सुलेमान अलैहि सलाम ने कहा था कि कोई है जो उसका तख्त जो है वो अभी पलक झपकने से पहले लेकर के आ जाए, ठीक है। तो वो ले आए पलक झपकने से पहले। अच्छा, अब यहाँ पर एक बड़ी अहम बहस है जो कि आगे क्लास पे छोड़ने के पूरा एक हफ्ता फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा सब्र कर लें कि यहाँ पर मलका बिल्कीस की जो है ना वो क्या अल्लाह ताला तारीफ फरमा रहे हैं, है ना, एक तरीके से तारीफ ही हो रही है ना, कभी वो आकिल तो थी, बस जो है ना वो बुरी सोहबत ने जो है ना वो उसको रोका हुआ था और कुफर के अंदर जो है वो डाला हुआ था, जैसे ही उसको मौका मिला वो बाहर आ गई। तो यानी ठीक है, तो अब यहां पर किसी के जहन में अगर कोई इश्काल वगैरह पैदा हो कि भाई औरत थी तो औरत तो नाकसुल अकल होती है ना, तो ये जो है वो कोई खास किस्म की औरत थी जो कि नाकसुल अकल नहीं थी, ठीक है। तो नहीं, ऐसा नहीं था, ये कोई खास किस्म की औरत नहीं थी, ये भी एक औरत ही थी ना, एक और एक नॉर्मल किस्म की औरत थी, ठीक है ना, एब नॉर्मल औरत नहीं थी, नॉर्मल औरत थी। नाकसुल अकल जो अल्लाह ताला जो नबी अलैहिस्सलाम ने औरत को कहा है ना, तो वो औरत की जिन्स को कहा है, हर औरत जो भी औरत होती है, ठीक है, तो वो नाकसुल अकल होती है। तो नाकसुल अकल क्यों कहा, जबकि इतनी अकल वाली जो बात उन्होंने करी, तो भाई वो जो नाकसुल अकल फरमाए ना, उस नाकसुल अकल का मतलब ये नहीं है कि औरत जो है वो क्या कहते हैं ईमान नहीं ला सकती है। भाई अगर औरत इतनी नाकसुल अकल, ऐसी नाकसुल, इतनी तो खैर नहीं कहना चाहिए, ऐसी नाकसुल अकल होती कि वो नबी को पहचान करके ईमान ही नहीं ला सकती, तो फिर ये इतनी सारी सहाबियात कहाँ से आ गई, इतनी सारी जो है वो मोमिनात कहाँ से आ गई, है ना, ये सारी की सारी वही औरत ही है ना, तो ईमान लेकर के आई है, तो भाई अकल इस, ये नाकसुल अकल इस रास्ते में रुकावट नहीं बनती, ठीक है ना। उसी तरीके से अल्लाह के हुक्मों की अताअत, राइट, ये भी औरत की नाकसुल अकल इस रास्ते में रुकावट नहीं बनती कि वो हुक्मों की अताअत नहीं कर सकती, उसकी ऐसी नाकसुल अकल है कि उसको हुक्म ही समझ में नहीं आते, वो अकल यानी इस्तेमाल ही नहीं कर पाती, वो अल्लाह के हुक्मों की अताअत नहीं कर सकती, नहीं, बल्कि ऐसी अताअत करती है कि बहुत सारे मर्दों को पीछे छोड़ जाती है, और विलायत के अंदर जो है वो मर्दों औरतों के दरमियान फर्क नहीं है, ठीक है ना। अल्लाह ताला ना इसके के अमाल को जाया करेंगे ना उसके अमाल को जाया करेंगे, दोनों जो है विलायत के अंदर ऊंचे मकामात पाते हैं, है ना, औरतें भी और मर्द भी। तो फिर नाकसुल अकल से क्या मुराद। अच्छा चलें, ये तो दीन की बातें हो गई, उसी तरीके से अब दुनिया की बात, जो हमारे हजरत भी अक्सर बयान फरमाते रहे कि जी दुनियावी मामलात के अंदर भी कि जी बेहतरीन जो है वो पढ़ाई लिखाई के अंदर, है ना, बेहतरीन मार्क्स लेकर के आएंगी, बेहतरीन ग्रेड्स होंगे, और जो है वो जबरदस्त किस्म के जो है वो अक्सर जो है वो बात समझ भी लेती हैं, ठीक है ना, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे थे अक्सर जो है वो मर्दों को समझ में नहीं आ रहे होते, ठीक है। तो नाकसुल अकल होने का इन किसी चीज के साथ ताल्लुक नहीं है, नाकसुल अकल के साथ जो है वो सिर्फ एक चीज का ताल्लुक है, ठीक है ना, एक तो ये कि वो क्यों, जज्बात की वजह से, और ये कोई नई बात नहीं है, आप कई दफा पहले भी सुन चुके होंगे, जज्बात की वजह से वो नाकसुल अकल होती है। तो भाई जज्बात हर वक्त कोई थोड़ी होते हैं, हर जगह कोई थोड़ी जज्बात जो है वो उसके आड़े आ जाते हैं, जहां कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है ना कि जहां पर के उसके जज्बात ट्रिगर हो जाते हैं, राइट, चाहे वो मोहब्बत के जज्बात हों, चाहे वो नफरत के जज्बात हों, राइट, जहां जज्बात ट्रिगर हो जाते हैं ना, अब जो है ना वो कानों पे पर्दा, आंखों के सामने पर्दा, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, क्योंकि जज्बात है ही ऐसी चीज, किसी मर्द के ऊपर भी अगर आ जाए ना, गालिब हो जाए, वो भी नाकस अकल ही हो जाता है। लेकिन मर्दों को अल्लाह ताला चूंकि जज्बात इतने ज्यादा दिए ही नहीं, इस वजह से बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस के अंदर मर्दों के साथ ऐसा होता है, लेकिन औरत को तो जज्बात का अल्लाह ताला ने मजमुआ बनाया है, ठीक है ना। और ये औरत की शान है, ये औरत की पहचान है, राइट। और ये औरत की जो है वो ममता और औरत की रहम रहम दिली और सब कुछ जो है जज्बात की वजह से है, ठीक है। तो जज्बात से आरी औरत तो पता नहीं क्या चीज है, वो तो औरत ही कहलाने के जो है वो उसके ऊपर शक होना शुरू हो जाता है कि वाकई औरत है कि पता नहीं क्या चीज है, ठीक है। तो जज्बात, ठीक है ना, कि जज्बात की वजह से वो नाकस अकल बन जाती है जब जज्बात उसके ट्रिगर हो रहे होते हैं। और ऐसी सिचुएशंस कब आती हैं, ठीक है ना, ऐसी सिचुएशंस जो है ना वो किसी वक्त भी आ सकती है औरत के ऊपर। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस नाकसुल अकल की वजह से, या जो हम इफ यू ज्वाइन द डॉट्स, ठीक है ना, कि भी क्यों फरमाया क्या, तो एक औरत का यानी एक रोल ऐसा है कि जिसको के अल्लाह ताला ने औरत को नहीं दिया, ठीक है ना, क्योंकि वो रोल जो है ना है बड़ा सेंसिटिव रोल, जिसके अंदर के जो है वो इसको दूसरों को गवर्न करना पड़ जाता, अमारत का रोल, अमारत, ठीक है ना, लीडरशिप का रोल, ठीक है। ये एक ऐसा रोल है कि जिसके ऊपर जो है ना वो कौम डिपेंड करती है, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली नहीं, कि भी बच्चों की परवरिश करती है तो बच्चे अगर अच्छे बन जाएंगे तो वो इनडायरेक्टली कौम का फायदा हो जाएगा, वो तो बड़ा लॉन्ग प्रोसेस है ना, कि अगर नई नस्ल अच्छी बनेगी तो कौम का फायदा होगा और उसकी नस्लें बन जाएंगी, और ये नहीं, लीडरशिप रोल में डायरेक्टली कौम के ऊपर इफेक्ट होता है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती जिसने औरत को अपना इमाम बना लिया। भाई जज्बात की वो नहीं, तो वो तो भाई यानी ऐसे ऐसी पोजीशन है ये कि जज्बात को तो बहुत ज्यादा ट्रिगर करती है ये वाला रोल ना, इसके अंदर तो बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आती रहती हैं। तो अगर आपने इसको वो वाला रोल अता कर दिया ना, तो फिर चले यहाँ पे हम क्लास खत्म करते हैं। वाखिर दुआना अनिल, अलहमदुलिल्लाह।